17 श्लोक आत्म संभाविता स्तब्धा मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् आत्मसंभाविता अपने को श्रेष्ठ मानने वाले सद्धा खमंडी धन माना धन तथा झूठी प्रतीक्षा के प्रतिष्ठा के मद मद में अन्विता लीन यजन्ते यज्ञ करते हैं नाम नाम मात्र के लिए यज्ञ यज्ञों के द्वारा ते वे दम्भेना घमंड से अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना के एक मिनट रुके अनुवाद पढ़िए मैं पढ़ रहा हूं अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि असुर मतलब विधि का पालन नहीं करेगा। रिवोल्ट रिवोल्ट समझते फ्रीडम, ये उसकी मुख्य लक्षण है। पहले बलदेव विद्यावसन जी की टीका को हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके, पहली चीज को समझा रहे हैं आत्म संभाविता को, कह रहे हैं कि वे अपने आप को महान मानते हैं केवल अपने द्वारा। कितना समझ में आ रहा है? जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यो मे भक्तः स मे प्रियः, इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति मुझको प्रिय है। तो अब कोई व्यक्ति महान भगवान की नजर में बनना चाहेगा तो विधि का पालन करके वो उन गुणों को विकसित करेगा। तो आत्म संभाविता का अर्थ आप क्या सीख रहे हैं, वो अपने ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं महानता के। जैसे भाई देखो भाई, ऐसे आजकल आप देखेंगे सुनेंगे कि खाने पीने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना, जब वो बोल रहे हैं खाने मतलब मुर्गा खाने वाले और पीने मतलब शराब पीने वाले, तो वो कहते हैं इसको ऐसे नहीं बोलते, बोलते शौकीन लोग हैं, हाँ एंजॉय कर रहे हैं, शौकीन मिजाज के व्यक्ति हैं। या स्त्रियों का संग करते तो बोलते शौकीन मिजाज है। तो बताइए ये गर्हित है, खराब है कि अच्छी बात है? स्वाभाविक सी बात है खराब बात है। या फिर स्त्रियों को स्त्रियां ही बोलती हैं, तुम लोग ये पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहनती हो, साड़ी साड़ी और सलवार सूट क्यों पहनती हो, तुम लोग बैकवर्ड हो। तो अपने ही मन से उन्होंने एक बना दिया है स्टैंडर्ड कि हम खराब कपड़े पहने या सिगरेट पिए तो हम लोग सही स्थान पे हैं। ये सब दानवी है, इसका ये विधि असुरी है एक्चुअली। और ये आत्म संभाविता है, मतलब अपने स्टैंडर्ड स्वयं स्थापित करना, अपनी पॉलिसी खुद बना लेना, ये है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें आप बता रहे हैं। दूसरी चीज बता रहे हैं स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब यहां बता रहे हैं नम्र नहीं होते हुए। देखिए जब हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं वही नम्रता का लक्षण है कि भाई मैं बहुत ही जगह, हाँ किसी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, किसी का भी मतलब शास्त्र का कि किसी का, तो मतलब हिटलर की आज्ञा पालन करने वाले लोग जो है वह भी इस प्रकार से हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद धन के कारण मद से वह चूर हो जाते हैं। मद से चूर होने का अर्थ समझते हैं आप, मदान्वित हो जाते हैं, मदान्वित लिखा हुआ है ना। ओके, उसके बाद अन्वित समझते ही है, अन्वित मतलब क्या कहेंगे इसको, अन्वित मतलब हो गया हाँ मतलब उसमें घुसा हुआ है चीज। आत्मसंभावित मदान्वित दोनों शब्द जैसे हैं इस प्रकार से, मद से भरे हुए हैं। तो इस कारण से वह एक महान परमहंस या एक महान सन्यासी के रूप में सम्मान चाहते हैं। उसके बाद वह देवताओं की उपासना करते हैं और देवताओं की उपासना के जो रूल मतलब कह सकते हैं विधि है, वह भी उनके अपने मन से होती है। यानी कि वह जो पूजा है वह पूजा केवल नाम मात्र के लिए होती है। क्या हम शब्द देख रहे हैं यहां पे, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम। देवता अपने हिसाब से, पूजा अपने हिसाब से और केवल नाम मात्र के लिए पूजा होती है। ये तो आप समाज में खूब देखते ही हैं, गणेश पूजा हो रही है और गणेश जी की पूजा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खाने वो गाने कौन से बजते हैं जो फिल्मी गाने बजाते हैं, कि गणेश जी को फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं या दुर्गा पूजा में इस प्रकार से फिल्मी गाने बजते हैं, सुना है आपने, कई बार देखा होगा है ना। गणेश जी मोटरसाइकिल चला रहे तो आप देख सकते हैं कि गणेश जी जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब बताओ, कहेंगे गणेश जी का चूहा जो है वो तो गणेश जी जो है चूहे की जगह अब मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से ये अपने मन से मनगढ़ंत तरीका है पूजा करने। उसके बाद इसमें लिखा है कि सन्यासी के रूप में भले ही वो अपना कपड़ा पहन ले, लेकिन दम्भेना, दम्भ के लिए करते हैं। दम्भ का याद है आपको अर्थ क्या था? धर्म का आडंबर करना, धार्मिक रूप के से रूप के रूप में जाने जाने के लिए, अपने घर और परिवार के लिए। जैसे महाराज बोल रहे थे कि एक साधु जी जा रहे थे, तो उन्हें कहा ये एक बच्चे किसके हैं, तो उनके मित्र ने बोला ये वैरागी जी के भक्त बच्चे हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्हें कहा मकान किसका है, तो कहते ये ब्रह्मचारी जी का मकान है। ऐसे करके लोग कर रहे हैं, और ऐसी बात जो मजाक की नहीं है, ये महाप्रभु की लीला में भी आता है। महाप्रभु एक बार एक दारी सन्यासी मतलब फ्रॉड सन्यासी के जाते हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निमय पंडित के रूप में, और वह व्यक्ति कहता है क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए, तो कहता हाँ हमें आनंद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो अंदर गया, अंदर जा रहा था, तो नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, एक्चुअली उससे पहले वो फल लेके आता है और महाप्रभु फल स्वीकार करते हैं, और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए, तो महाप्रभु समझ नहीं पाते आनंद का मतलब क्या है, तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं, तो कहते आनंद का मतलब शराब। तो महाप्रभु भागते हैं गंगा जी में, सीधे जाकर के कपड़े सहित स्नान कर लेते हैं, और उसकी स्त्री अंदर रहती है, तो बाहर रूप से वो सन्यासी है लेकिन स्त्री भी रखता है। तो ये सारी चीजें हम महाप्रभु के समय में भी देखते थे, और इसे करने से करने के लिए जो भी इनको कार्यक्रम है वो अविधि पूर्वक है, अर्थात वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। कौन पढ़ना चाहते हैं? आनंद कृष्ण प्रभु या हमारे संतोष कृष्ण प्रभु, थोड़ी आप भी अच्छा पढ़ते हैं।
अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं।
ओके होल्ड, अपने को सब कुछ मानते हुए का अर्थ क्या है संस्कृत में? अरे ये संस्कृत ना बोल रहे हैं, श्लोक पे देखिए आत्मसंभावितः। यस, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करने का अर्थ क्या है हिंदी संस्कृत में? अविधि पूर्वकम। और कभी कभी तथा कथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? यजन्ते नाम यज्ञस्य, एकदम स्पष्ट हो रहा है। भगवत गीता साथ में रखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि जो भी है नाम से मतलब नहीं, बहुत सारी गीता है, ये अलग प्रकार की क्लास है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए आगे।
चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं।
क्या श्लोक कौन सा अर्थ है ये? स्तब्ध। यस,
थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है उसी के कारण ऐसा होता है।
कौन सा शब्द है? धनमानम अदानवितः। यस,
कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं।
ये बलदेव विद्याभूषण जी अभी बोल रहे थे ना, यही बताया था। ठीक है, पढ़िए।
सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को में बढ़ा चढ़ा मानते हैं।
जैसे दो तीन उदाहरण तो आप जानते हैं, एक विशाख सेन नाम का व्यक्ति था भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने समय में, जब अपने आप को महाविष्णु का अवतार बोलता था। और इस समय में महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं मान लीजिए कोई कुत्ता है और उसके गले में आप टांग दीजिए भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रधानमंत्री हो जाता है। ऐसे ही अपने गुरु को या किसी भी व्यक्ति को भगवान कह देना बिना शास्त्र की आज्ञा के, ये इस तरह और इस तरह से लोग करते हैं। परात्पर ब्रह्म, पर ब्रह्म हमारे गुरुदेव, 108 कोई अनंत श्री कुछ भी लगा देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु जी जो है वो भगवान हो जाते हैं।
महामंडलेश्वर
और एक नहीं, महामंडलेश्वर इतना प्रॉब्लम नहीं है, महामंडलेश्वर इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो एक आचार्य की बात ही हो सकती है, लेकिन भगवान की उपाधि नहीं है, परब्रह्म की उपाधि नहीं है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में एक और बात वो बोल रहे थे कि महाराज जी की कह रहे थे कि एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप भगवान है? तो गुरु जी ने कहा कि आपको क्या लगता है? तो कहता है मुझे तो आप साक्षात परात्पर ब्रह्म लगते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा साक्षात्कार गलत हो ही नहीं सकता है। तो गुरु जी का महाराज बोल रहे गुरु जी को ज्ञान देना चाहिए शिष्य को कि शिष्य बताएगा कि गुरु जी कौन है? तो इस प्रकार से ये धोखेबाजी होती है। अगर हम नाम लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यस,
वे सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं और उस भेष में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले एक अनेक प्रतिबंध होते हैं।
विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, अर्थात सन्यासी के ऊपर अनेक प्रतिबंध होते हैं। यस,
लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग।
यथा मत तथा पथ, कहीं पहुंचना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, सारे रास्ते वही जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि वो बताते नहीं कि वहीं का अर्थ क्या है। सारे रास्ते पकड़ लो वही जाते हैं, तो वस्तुतः अगर आपको शास्त्र नहीं पता है तो वहीं का अर्थ है विभिन्न प्रकार के नरक। नाक उधर से छुओ चाहे उधर से छुओ, लेकिन ये कोई उदाहरण ठीक नहीं है। और इसका मेन बात क्या है, शास्त्र में कहीं लिखा है क्या? कहीं किसी वेद शास्त्र में, रामायण में, महाभारत में लिखा है कि कैसे भी पूजन करो, किसी का भी पूजन करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देवताओं के लोग देवता के पास जाते हैं, स्पष्ट है तो, लेकिन आंखों से आग दुख के विश्वास कर लेता है।
शास्त्रों को हटा के अपना लिपि देता,
शास्त्रों को हटा करके अपना अपना लिपि विधि कर लेते हैं। यस, पढ़िए।
उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपने जीवन में आप देख भी रहे होंगे कि क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक क्या बोले थे प्रभुपाद, स्टैंडर्ड हम जो गए क्या सब स्टैंडर्ड के लिए क्या यूज किया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे?
मार्ग
नहीं, मार्ग तो है, आदर्श मार्ग हम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कितने भी अज्ञान में हो, वो जब उस विधि का पालन करता है तो वो शुद्ध हो ही जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत गंभीर बात है। इस इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड विधि दी है कृष्ण भावना की, प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करो, मंगल आरती जाओ, भागवत सुनो, तदारजस तमो भाव काम लोभ दयश्च। ये स्टैंडर्ड प्रभाव है, ये एक सट प्रभाव है भागवत का, भगवत गीता का। ऐसा नहीं कि भागवत का कुछ और प्रभाव होगा, अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये अनर्थों का नाश कर ही गई। तो इस कारण से ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मार्ग है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्तिम योगम भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतः विद्वांस चक्रे सात्वर संहिताम। लोगों के जो अनर्थ हैं वो उनके ऊपरी कवरिंग मात्र है और उसका एकमात्र इलाज है भक्ति योग, इसलिए संहिता का रचना की गई है। तो वेदव्यास जी के द्वारा ही एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है, स्टैंडर्ड तरीका देके भक्ति योग, भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्रसाद खाओ, स्टैंडर्ड कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमारे संग हमारा कर्तव्य क्या है, हम इसे चेंज ना करें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अच्छा वैद्य है और उसको पता है कि बीमारी क्या है तो दवा को परिवर्तित नहीं करता, और जिस डॉक्टर को पता नहीं है कि आपकी बीमारी क्या है और उसकी सही दवा क्या है वो दवा चेंज करता रहेगा। एने छे औषधि माया नसी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लोय तुम्हें मांगे। एक बार किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद मेरा मन ऐसा है वैसा ऐसा है वैसा वैसा, प्रभुपाद ने कहा मेरे पास एक ही दवा है हरि नाम महामंत्र, वो करेगा ही काम, बस हमको श्रद्धा से उसको लेते रहना पड़ेगा। इसका जो चार्जिंग ऊपर पर बाहर निकाल दीजिए, किरकिराहट आती रहेगी। ठीक है, ओके, हो गया ना श्लोक तो ओके।